एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी रोज की बातचीत में कम ही आता है, पर है बहुत जरूरी। मेरा मतलब है सैन्य न्याय प्रणाली यानी मिलिट्री जस्टिस सिस्टम।
हाँ, और इस दिलचस्प सफर में हमारे गाइड होंगे यूजीन आर फिडल। वो अमेरिका में मिलिट्री लॉ के, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं। हमारे पास उनके काम का सार है और हम उसी पर आज गहराई से चर्चा करेंगे।
बिल्कुल। और ये विषय अहम क्यों है, कभी सोचा है? ये जो कानून है ना, ये लाखों सैनिकों की जिंदगी पर मतलब सीधा असर डालते हैं।
सही बात है। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये सेना का अनुशासन, उसकी जो असर डालने की क्षमता है, और साथ ही सैनिकों के अधिकार, इन सबके बीच एक बहुत ही, क्या कहते हैं ना, नाजुक सा संतुलन बनाने की कोशिश है।
और अक्सर क्या होता है कि हम आम लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते, थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है ये दुनिया।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि एक लोकतंत्र में सेना के अंदर न्याय कैसे काम करता है, इसकी क्या अपनी खासियतें हैं, क्या चुनौतियां हैं। और देखिए, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये सिद्धांत तो दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए मायने रखते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं यूजीन फिडल से, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आखिर क्यों उनकी बात में इतना वजन है इस विषय पर?
अरे, फिडल की पृष्ठभूमि तो कमाल की है। हार्वर्ड और येल जैसे बड़े संस्थानों से पढ़े हैं और खुद अमेरिकन कोस्ट गार्ड में जज एडवोकेट रहे हैं, मतलब मिलिट्री लॉयर। तो सिस्टम को अंदर से देखा है उन्होंने।
अच्छा, अंदर से जानने वाला नजरिया तो है ही, पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये लॉ स्कूल में पढ़ाते भी हैं, तो अकादमिक समझ भी है, और सैनिकों के बचाव में कोर्ट मार्शल और अपील अदालतों में वकील के तौर पर भी काम किया है। मतलब प्रैक्टिकल अनुभव भी जबरदस्त है।
बिल्कुल सही है। और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री जस्टिस के को-फाउंडर भी रहे हैं और न्यूज वगैरह में भी सैन्य कानूनी मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखते हैं।
तो मतलब एक अफसर के तौर पर, एक वकील के तौर पर, एक टीचर के तौर पर और एक सुधारक के तौर पर, चारों नजरिए हैं उनके पास।
हाँ, और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, यही उनकी बातों को इतना खास बनाता है।
अच्छा, तो उनके काम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये किताबें सिर्फ वकीलों या कानून के छात्रों के लिए हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिडल का एक बड़ा मकसद ही यही है कि ये जो जटिल सी दुनिया है ना सैन्य न्याय की, इसे आम लोगों के लिए खोला जाए, जैसे पत्रकार हों, छात्र हों, हम जैसे आम नागरिक हों, और हाँ, खुद सेना के लोगों के लिए भी। ये एक तरह से सबके लिए एक बेसिक गाइड है।
और उनकी किताबों का निचोड़ क्या है, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, कोर आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखिए, मूल बात यह है कि सैन्य न्याय जो है वो हमारे आपके सिविलियन कानून का बस फौजी रूप नहीं है, ये एक अलग, बिल्कुल समानांतर कानूनी प्रणाली है।
अलग किस मायने में?
इसकी जरूरत सेना के अपनी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर वो जिसे कहते हैं गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मतलब अच्छी व्यवस्था और अनुशासन।
ये गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये जुमला तो बहुत सुनते हैं सेना के बारे में, पर फिडल के हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सख्ती है?
नहीं, फिडल समझाते हैं कि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सेना के असरदार होने की, मतलब इफेक्टिव होने की नींव है। आप सोचिए, हम अपनी आम जिंदगी में शायद देर से ऑफिस पहुंचें या किसी सीनियर से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लें।
हाँ, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ जाएगी।
बिल्कुल। लेकिन जंग के मैदान में या किसी मुश्किल ऑपरेशन में यही छोटी सी लगने वाली चीजें तबाही ला सकती हैं, जान जा सकती हैं, इसलिए अनुशासन पर इतना ज्यादा जोर होता है।
अच्छा, तो यहीं से शायद वो फर्क शुरू होता है सिविलियन और मिलिट्री कानून के बीच।
हाँ बिल्कुल, फेडरल इसी पर आते हैं। पहला बड़ा फर्क तो है ज्यूरिसडिक्शन का, मतलब ये कानून किस किस पर लागू होता है, सिर्फ सैनिकों पर या कुछ और लोगों पर भी। दूसरा, और ये बहुत बड़ा फर्क है, वो है कमांडर की भूमिका। सैन्य सिस्टम में कमांडर का रोल बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं शक्तिशाली होता है।
कैसे?
मतलब वो सिर्फ आदेश देते हैं?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जांच शुरू करवाने से लेकर आरोप तय करने तक और यहाँ तक कि कोर्ट मार्शल के लिए जूरी चुनने में भी कमांडर का रोल होता है। इसे कन्वीनिंग अथॉरिटी कहते हैं।
अरे, ये तो हमारे सिविलियन सिस्टम से बहुत ही अलग है, वहाँ तो पुलिस, प्रोसिक्यूटर, जज सब अलग अलग होते हैं।
हाँ, और कुछ खास किस्म के अपराध भी हैं जो सिर्फ सेना में ही होते हैं, जैसे ड्यूटी में लापरवाही करना या हुक्म न मानना या मान लीजिए दुश्मन के सामने ठीक से ना लड़ना। ये सब सीधे सीधे सेना की ऑपरेशनल क्षमता से जुड़े हैं।
फिडल ये भी बताते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे। अमेरिका के संविधान ने कांग्रेस को ताकत दी कि वो सेना के लिए नियम बनाए, फिर ब्रिटिश कानूनों का असर रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें बड़े सुधार हुए, जिसके बाद 1950 में बना यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस यानी UCMJ। यही आज भी सिस्टम का आधार है।
तो ये UCMJ ये क्या है? क्या ये कोई मोटी सी रूल बुक है?
हाँ, एक तरह से समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कानून की धाराएं, जो बताते हैं कि क्या क्या चीजें अपराध मानी जाएंगी और उनकी सजा क्या हो सकती है। आर्टिकल 77 से 134 तक तो सीधे दंडनीय अपराधों की लिस्ट है।
अच्छा।
और इसमें एक आर्टिकल 134 है जिसे जनरल आर्टिकल कहते हैं। ये काफी व्यापक है, मतलब ये ऐसे किसी भी बर्ताव को अपराध बना सकता है जो सेना के अनुशासन के खिलाफ हो या जिससे सेना की बदनामी हो।
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खुला हुआ सा लग रहा है, मतलब कुछ भी इसके दायरे में आ सकता है।
हाँ, ये एक बहस का मुद्दा हमेशा रहा है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन फिडल बताते हैं कि सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना जाता है। खैर, अब बात करते हैं इस सिस्टम के मुख्य किरदारों की।
हाँ बताइए।
कमांडर की भूमिका तो हमने समझी, जिसे कन्वीनिंग अथॉरिटी कहते हैं। फिर आते हैं जज एडवोकेट जनरल यानी JAGS। ये सेना के अपने वकील होते हैं।
सेना के वकील मतलब वो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं?
वो सलाहकार भी होते हैं, प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील भी होते हैं, और डिफेंस लॉयर यानी बचाव पक्ष के वकील भी होते हैं। सब सेना के ही अफसर होते हैं ये।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब अभियुक्त सैनिक को भी सेना का ही वकील मिलता है?
हाँ, उसे अधिकार है कि वो सेना का वकील ले, या चाहे तो अपना बाहर से सिविलियन वकील भी रख सकता है। और फिर होते हैं मिलिट्री जज, जो कोर्ट मार्शल की कार्यवाही देखते हैं। ये भी आमतौर पर अनुभवी JAG अफसर ही होते हैं।
ठीक है, और ये कोर्ट मार्शल ये कितने तरह के होते हैं? क्या हर छोटी गलती के लिए एक ही तरह का मुकदमा होता है?
नहीं, फिडल तीन लेवल बताते हैं। सबसे नीचे है समरी कोर्ट मार्शल, ये बहुत छोटे मोटे अपराधों के लिए है जिसमें सजा भी बहुत सीमित होती है।
जैसे?
जैसे शायद कुछ दिन की कैद या थोड़ी फाइन वगैरह। फिर आता है स्पेशल कोर्ट मार्शल, ये थोड़े गंभीर मामलों के लिए है, इसमें करीब एक साल तक की कैद हो सकती है या बैच छीन लेना वगैरह। और सबसे ऊपर
है जनरल कोर्ट मार्शल, ये बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए होता है, जैसे हत्या, जासूसी या जंग के दौरान गंभीर अपराध। इसमें उम्र कैद से लेके मौत की सजा तक मुमकिन है।
तो ये तो काफी गंभीर प्रक्रिया है, लेकिन क्या हर छोटी मोटी गलती के लिए, जैसे कोई सैनिक लेट हो गया या यूनिफॉर्म ठीक नहीं पहनी, क्या उसके लिए भी कोर्ट मार्शल होता है? रोजमर्रा के अनुशासन का क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। पिडल इसके लिए नॉन जुडिशियल पनिशमेंट या NJP का जिक्र करते हैं, इसे आर्टिकल 15 भी कहते हैं। ये कमांडर के हाथ में एक, आप कह सकती हैं, रोजमर्रा के अनुशासन का टूल है।
NJP
ये क्या होता है?
इसमें कमांडर छोटी मोटी गलतियों के लिए बिना कोर्ट मार्शल के ही सजा दे सकता है, जैसे कुछ दिनों की एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी, या कुछ दिनों का वेतन काट लिया, या रैंक कम कर दी। इससे मामले जल्दी निपट जाते हैं।
अच्छा, ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है छोटी बातों के लिए, लेकिन क्या इसमें सैनिक की कोई सुनवाई नहीं होती? क्या वो इसके खिलाफ कुछ कह सकता है?
हाँ बिल्कुल, सैनिक को ये अधिकार है कि वो NJP लेने से मना कर दे और कोर्ट मार्शल की मांग करे। ये एक जरूरी सेफगार्ड है।
खैर, अब मान लीजिए मामला गंभीर है और कोर्ट मार्शल तक जाता है, तो प्रोसेस क्या है?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
फिडल बताते हैं कि सबसे पहले जांच होती है। सेना की अपनी जांच एजेंसियां होती हैं, जैसे नेवी की NCIS, आर्मी की CID वगैरह, वो सबूत इकट्ठा करती हैं।
फिर
जांच के बाद औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाते हैं, इसे प्रेफरल ऑफ चार्जेस कहते हैं। और अगर मामला जनरल कोर्ट मार्शल का है, यानी सबसे गंभीर वाला, तो एक आर्टिकल 32 प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है। फिडल इसकी तुलना हमारी सिविलियन ग्रैंड ज्यूरी से करते हैं। इसमें एक अफसर सारे सबूतों को देखता है और सिफारिश करता है कि क्या केस इतना मजबूत है कि ट्रायल चलाया जाए।
ये एक तरह का फिल्टर है,
समझ गए,
ताकि बेवजह किसी पर गंभीर मुकदमा न चले। और फिर आता है असली ट्रायल यानी कोर्ट मार्शल। वो कैसे होता है? क्या वो हमारे कोर्टरूम जैसा होता है?
कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ बड़े फर्क भी हैं। समानता यह है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, और सबूत का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब शक की कोई गुंजाइश ना रहे।
ये तो सिविलियन कोर्ट जैसा ही है।
हाँ, लेकिन फर्क आता है जूरी में। यहाँ जूरी को पैनल कहते हैं, और ये पैनल आम नागरिकों का नहीं होता, ये सेना के ही अधिकारियों और कभी कभी सीनियर जवानों का होता है।
और क्या इसमें कोई रैंक वगैरह का भी चक्कर होता है?
बिल्कुल, ये जरूरी है कि पैनल के सदस्य रैंक में अभियुक्त से सीनियर हों। ये एक बहुत ही खास बात है मिलिट्री जस्टिस की।
ये वाकई अलग है, और सजा कौन सुनाता है, जज या पैनल?
ज्यादातर मामलों में वही पैनल जो ये तय करता है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, वही तुरंत सजा भी तय कर देता है।
सजा क्या क्या हो सकती है?
कई तरह की, डांट फटकार से लेकर वेतन जब्ती, रैंक घटाना, जेल, और कुछ बहुत गंभीर सजाएं भी हैं, जैसे सेना से अपमानजनक तरीके से निकालना।
अपमानजनक निकालना मतलब?
हाँ, जैसे बैड कंडक्ट डिस्चार्ज या डिसऑनरेबल डिस्चार्ज। इसका असर सैनिक की बात की सिविलियन जिंदगी पर भी बहुत बुरा पड़ता है, नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, वगैरह वगैरह। और हाँ, बहुत ही रेयर केस में मौत की सजा भी।
बाप रे, काफी कठोर सजाएं हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को सजा हो गई, तो क्या उसके बाद सारे रास्ते बंद या अपील वगैरह का कोई सिस्टम है?
नहीं नहीं, फिडल इस पर बहुत जोर देते हैं कि अपील का एक काफी मजबूत सिस्टम है, ये कई लेवल पर काम करता है।
कैसे?
सबसे पहले जिस कमांडर ने कोर्ट मार्शल बुलाया था, यानी कन्वीनिंग अथॉरिटी, वो सजा की समीक्षा करता है। वो चाहे तो सजा को कम कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता।
अच्छा, ये पहला लेवल हुआ। इसके बाद?
इसके बाद मामला सेना की अपनी अपील अदालतों में जा सकता है। इन्हें कहते हैं सर्विस कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल अपील्स। हर सर्विस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन कॉर्प्स, कोस्ट गार्ड, सबकी अपनी अपील कोर्ट होती है।
और क्या इसके ऊपर भी कुछ है? जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, क्या सेना का भी अपना कोई सुप्रीम कोर्ट जैसा है?
हाँ, एक तरह से है। सबसे ऊपर है कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर दी आर्म्ड फोर्सेस, शॉर्ट में CAAF। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है।
क्यों?
इसमें क्या खास है? खास ये है कि इसमें 5 जज होते हैं, और ये 5 जज सिविलियन होते हैं, सेना के नहीं। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
क्या बात है, सिविलियन जज सेना की सबसे ऊंची अदालत में, ये तो वाकई दिलचस्प है।
हाँ, ये सिस्टम में नागरिक नियंत्रण और एक बाहरी नजरिए को सुनिश्चित करने का एक तरीका है, और ये दिखाता है कि सिस्टम पूरी तरह से बंद नहीं है।
और क्या CAAF के फैसले के बाद भी कोई अपील हो सकती है?
हाँ, कुछ चुनिंदा मामलों में अगर कोई बड़ा संवैधानिक सवाल जुड़ा हो तो CAAF के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। तो आप देख सकती हैं कि पूरी प्रणाली देश की मुख्य न्यायपालिका से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।
ये तो हुई पूरी संरचना और प्रक्रिया की बात, लेकिन फिडल आज की चुनौतियों के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है या इसमें भी दिक्कतें हैं?
नहीं, परफेक्ट तो कोई सिस्टम नहीं होता, और फिडल चुनौतियों पर बहुत खुलकर बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ सालों में सामने आया है, वह यौन उत्पीड़न का संकट सेना में।
ये तो काफी सुना है, इस पे बहुत बहस हुई है।
बिल्कुल, और बहस का केंद्र अक्सर कमांडर की भूमिका रही है। सवाल ये उठा कि क्या कमांडर, जिन पर यूनिट का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही इन संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच और फैसले के लिए सही व्यक्ति हैं? कहीं हितों का टकराव तो नहीं?
ये तो वाजिब सवाल है। तो क्या इसमें कोई बदलाव आया है?
हाँ, हाल ही में 2021 में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब यौन उत्पीड़न और कुछ अन्य गंभीर अपराधों के मुकदमे चलाने का फैसला कमांडरों के हाथ से ले लिया गया है।
ओह, तो अब कौन फैसला करेगा?
अब ये फैसला स्वतंत्र सैन्य वकील करेंगे, जिन्हें स्पेशल ट्रायल काउंसिल कहा गया है। ये कमांडर के अधीन नहीं होंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। और क्या चुनौतियां हैं फिर, और किस चीज का जिक्र करते हैं?
एक और बड़ी चुनौती है अवैध कमांड प्रभाव, यानी अनलॉफुल कमांड इन्फ्लुएंस, UCI।
UCI? ये क्या बला है?
फिडल इसे सैन्य न्याय का जानी दुश्मन कहते हैं, मतलब मॉर्टल एनिमी। ये तब होता है जब कोई कमांडर जानबूझकर या अनजाने में अपने पद या रुतबे का इस्तेमाल करके किसी केस के नतीजे या गवाहों या जूरी सदस्यों को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है।
अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर से ही उसे कमजोर करने की कोशिश।
हाँ, और ये निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर सीधा हमला है। इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और कोई मुद्दा?
फिडल नस्लीय असमानता की तरफ भी इशारा करते हैं। कुछ स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि अमेरिका में अल्पसंख्यक समुदायों के सैनिकों को, मतलब नॉन वाइट सैनिकों को, अनुशासनहीनता के मामलों और कोर्ट मार्शल का सामना श्वेत सैनिकों की तुलना में ज्यादा अनुपात में करना पड़ता है। यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है। और फिर जाहिर है, सेना तो दुनिया भर में फैली होती है, तो अलग अलग देशों में कानून व्यवस्था चलाना, मेजबान देशों के साथ संधियों का पालन करना, युद्ध के कानूनों का मामला, ग्वांटानामो बे जैसी जगहें, ये सब चीजें सिस्टम को और भी ज्यादा जटिल बना देती।
तो इन सब बातों को समेटें तो फिडल के काम से कुछ बड़े सबक या मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे अहम थीम है अनुशासन और न्याय के बीच का वो अनिवार्य तनाव। ये फिडल के काम का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। सेना को असरदार होने के लिए अनुशासन चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो एक लोकतंत्र का हिस्सा है तो सैनिकों के अधिकार और न्याय भी उतना ही जरूरी है।
जी,
इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, यही सबसे बड़ा संघर्ष है।
ये तो है।
और दूसरा?
दूसरा थीम है कमांडर की वो केंद्रीय और हाँ विवादास्पद भूमिका। कमांडर सिस्टम के लिए जरूरी है, अनुशासन के लिए जरूरी है, लेकिन यही शक्ति, जैसा हमने देखा, यूसीआई या पक्षपात का जरिया भी बन सकती है। जो हाल में सुधार हुए हैं वो इसी शक्ति को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश लगते हैं।
बिल्कुल। तीसरा थीम शायद ये है कि सैन्य न्याय एक अलग, एक विशिष्ट प्रणाली है। इसे सिर्फ सिविलियन कानून के चश्मे से नहीं देख सकते। इसकी अपनी जरूरतें हैं, अपना लॉजिक है। और चौथा थीम है सिस्टम का लगातार विकास और एक तरह का नागरिकीकरण। मतलब समय के साथ इसमें सिविलियन अदालतों जैसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा बढ़ी है, जैसे अपील का सिस्टम मजबूत हुआ है, सबूतों के नियम ज्यादा स्पष्ट हुए हैं, CAF में सिविलियन जज आए हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम खुद को सुधारने की कोशिश तो कर रहा है।
और पांचवा?
पांचवा मेरे हिसाब से सुधार, जवाबदेही और पब्लिक स्क्रूटनी यानी सार्वजनिक जांच का महत्व। ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल रहा है, विकसित हो रहा है, और इसमें बाहरी दबाव, पारदर्शिता और हम जैसे आम लोगों की समझ और रुचि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे लोकतंत्र में भी ये बात उतनी सच है। सेना पर नागरिक नियंत्रण और उसकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो?
फिडल के काम में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो इन थीम्स को बहुत सटीक ढंग से पकड़ते हैं। कुछ यादगार बातें साझा कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल। जैसे वो एक जगह कहते हैं और ये मुझे बहुत पसंद आया, सैन्य न्याय को दो स्वामियों की सेवा करनी होती है, सैन्य प्रभावशालीता और संवैधानिक निष्पक्षता। चुनौती उनमें से किसी एक को चुनने में नहीं बल्कि दोनों की सेवा करने में है।
वाह, मतलब संतुलन ही कुंजी है। या तो ये या वो नहीं चलेगा, दोनों को साधना होगा।
बिल्कुल। और कमांडर की भूमिका पर वो कहते हैं, सैन्य न्याय में कमांड की भूमिका कोई पुरानी चीज नहीं है जिसे खत्म कर दिया जाए, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे सही ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। मतलब कमांडर की जरूरत है, बस उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल हो, उस पर अंकुश हो।
और एक और जरूरी बात लगती है मुझे, एक सैन्य न्याय प्रणाली जो सेवा सदस्यों का विश्वास खो देती है, वो सैन्य अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों को कमजोर करती है।
हाँ, अगर सैनिक ही सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे तो अनुशासन कैसे रहेगा, और अगर जनता का भरोसा उठ गया तो फिर लोकतांत्रिक निगरानी का क्या मतलब।
और वो UCI वाली लाइन तो बिल्कुल सीधी है, अवैध कमांड प्रभाव सैन्य न्याय का जानी दुश्मन है, क्योंकि ये निष्पक्षता की जड़ पर ही हमला है।
अच्छा, अब ये सारी बातें तो हमने समझ ली, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी समझ के लिए क्या मतलब है? इन्हें हम कैसे देख सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो खुद सेना में हैं या जिनके परिवार के लोग सेना में हैं, उनके लिए अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी उन्हें इस सिस्टम को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में, मतलब समझने और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है।
हाँ, ये तो सीधा फायदा है। और हम जैसे आम नागरिकों के लिए,
लीजिए, यौन उत्पीड़न सुधारों पर कोई बहस हो रही है या कोई बड़ा हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो हम उसे बेहतर संदर्भ में समझ सकें। सिर्फ सनसनीखेज हेडलाइन न देखें, बल्कि उसके पीछे के सिस्टम और मुद्दों को भी थोड़ा समझें।
सही बात है, एक सूचित नागरिक होना भी तो जरूरी है लोकतंत्र में।
बिल्कुल। और जो लोग नीतियां बनाते हैं या सुधारों पर काम करते हैं, उनके लिए फिडल का काम एक तरह का फ्रेमवर्क देता है कि किसी भी बदलाव का मूल्यांकन कैसे करें। क्या वो सेना की प्रभावशीलता बढ़ा रहा है, क्या वो अधिकारों की रक्षा कर रहा है, या दोनों के बीच संतुलन बना रहा है। और हाँ, वकीलों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि सिविलियन और मिलिट्री कानून में क्या फर्क है।
तो कुल मिलाकर यूजीन फिडल का काम हमें सैन्य न्याय की जटिलता दिखाता है। ये कोई आसान चीज नहीं है, ये लगातार सुरक्षा की जरूरतों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बीच एक तरह का संतुलन साधने का संघर्ष है।
हाँ बिल्कुल। मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे रहा वो ये था कि ये सिस्टम कितना डायनामिक है, मतलब कितना गतिशील है। ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, खासकर समाज की बदलती उम्मीदों और बाहरी जांच के जवाब में, जैसे वो CAF में सिविलियन जजों का होना या हाल के सुधार। ये दिखाते हैं कि सिस्टम में खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है, भले ही रफ्तार कभी धीमी लगे, पर बदलाव हो रहा है।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई वो है कमांडर की भूमिका, वो कितनी ज्यादा केंद्रीय है और साथ ही कितनी ज्यादा विवादास्पद भी। ये वाकई इस पूरी प्रणाली के दिल में है और इसी के संतुलन पर सब कुछ टिका हुआ सा लगता है। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी संस्था, खासकर सेना जैसी संस्था, अपनी खास जरूरतों को अपने सदस्यों के अधिकारों के साथ जोड़ने की जद्दोजहद करती है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर की सेनाओं और लोकतंत्रों के लिए सोचने वाली बातें हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।